अथ तृतीय अध्याय अब तीसरा अध्याय भव प्रत्योपधिर्देव नारकाणाम इत्येवम् आदिशु नारकाः श्रुतास्ततः पृच्छति के इति नारका इति। अब पहले जो प्रथम अध्याय में सूत्र आया था भव प्रत्योपधिर्देव नारकाणाम इत्यादिक और एवं आदिशु और भी कई जगह नारक 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 शब्द सुनने में आता है, इसलिए पूछते हैं कि वे नारक कौन है। तत् प्रतिपादनार्थम तदधिकरण निर्देश क्रियते। नारक का प्रतिपादन करने के लिए उनके अधिकरण यानी उनका जो स्थान है कहाँ होते हैं नारक, उसका निर्देश किया जाता है। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमु महातम प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः, ये सात नीचे नीचे भूमयः भूमियाँ हैं। रत्न भू प्रभा शर्करा प्रभा बालुका प्रभा पंक प्रभा धूम प्रभा तमह प्रभा और महातमह प्रभा, ऐसी सात भूमियाँ हैं। फिर घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा और ये घनवात वले तन घनाम्बुवात वले और तनुवात वले और आकाश, इन पर आधारित है प्रतिष्ठित है। और नीचे नीचे की तरफ ये सात भूमियाँ हैं। रत्नंच शर्करा च बालुका च पंकश्च धूमश्च तमश्च महातमश्च। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमु महातमांसी समास की है बहुव्री, ये द्वंद्व समास की है। फिर प्रभा शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, प्रभा शब्द सबके साथ जोड़ना है। साहचर्या तत्शब्द शब्दम शब्दम, सहचरता होने के कारण तत् सह तात् शब्दम साहचर्यात तात् शब्दम। अब देखिए इसका खुलासा कर रहे हैं कि चित्रादि रत्न प्रभा सहचरिता भूमि, चित्रा आदि जो पृथ्वियां हैं रत्न की प्रभा की सहचरिता है वो भूमि रत्न प्रभा। फिर शर्करा प्रभा सहचरिता भूमि शर्करा प्रभा, शक्कर जैसी प्रभा जिसमें है और उससे जो सहचरित है माने उससे युक्त है वो भूमि शर्करा प्रभा है। बालुका प्रभा सहचरिता भूमिर बालुका प्रभा, और बालू जैसी प्रभा जिसमें आती है उससे सहचरित है वो बालुका प्रभा है, बालू यानी रेत। फिर पंक प्रभा सहचरिता भूमि पंक प्रभा, पंक यानी कीचड़ जैसी प्रभा से सहचरित जो भूमि है वो पंक प्रभा है। धूम प्रभा सहचरिता भूमिर धूम प्रभा, धुएं जैसी प्रभा से सहचरित जो भूमि है तो धूम प्रभा है। तमह प्रभा सहचरिता भूमि तमह प्रभा, अंधकार जैसी प्रभा है जिसकी उससे सहचरित भूमि तमह प्रभा। महातमह प्रभा सहचरिता भूमिर महातमह प्रभा, अत्यंत घने अंधकार जैसी प्रभा से सहचरित भूमि महातमह प्रभा इति। एता संज्ञा अनेन उपायेन व्युत्पाद्यन्ते, इस उपाय से ये नाम व्युत्पत्ति को प्राप्त कराए जाते हैं। भूमि ग्रहण अधिकरण विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, भूमि जो ग्रहण किया गया है इस सूत्र में वो अधिकरण विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आधार विशेष की जानकारी के लिए किया गया है। यथा स्वर्ग पटलानी भूमि मनाश्रित्य व्यवस्थानी, जैसे स्वर्गों के पटल 63 पटल होते हैं स्वर्गों में और नरकों में नीचे नीचे पाथड़े रहते हैं 49, तो जैसे स्वर्ग पटल धरती का आश्रय किए बगैर व्यवस्थित रहते हैं न तथा नारक आवास, उस प्रकार नारक जीवों के जो आवास नरक हैं वो ऐसे आकाश में नहीं होते, किन तरह फिर कैसे होते हैं तो भूमि में आश्रिता थी, भूमि में आश्रित होते हैं, यानी इन सात भूमियों में नरक के बिल होते हैं। आसाम भूमि नाम आलंबन निर्ज्ञानार्थम घनाम्ब वातारिक ग्रहण क्रियते, इन भूमियों का आलंबन क्या है, ये भूमियाँ किन पर टिकी हुई है, तो इसके लिए आगे कहा गया घनाम्ब वातारिक ग्रहण। घनाम्बुच वातश्च आकाशंच घनाम्बु वाताकाशानी, घनाम्बु वात और आकाश ये इनके आधार हैं। तानि प्रतिष्ठा आश्रयो यासाम ता घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, ये जिन भूमियों का आश्रय है, जिन भूमियों की प्रतिष्ठा माने आधार है, वे घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा भूमियः, भूमिय सूत्र में था तो ये उससे प्रतिष्ठित भूमियाँ हैं। सर्वा एता भूमियः, ये सारी भूमियाँ घनोदधि वलय प्रतिष्ठा, घनोदधि वलय पर आश्रित हैं। घनोदधि वलय, घनोदधि वलय घनवात वलय प्रतिष्ठित, घनोदधि प्रतिष्ठम, घनोदधि जो वलय है वो घनवात वलय पर प्रतिष्ठित है, और घनवात वलय तनुवात वलय प्रतिष्ठित प्रतिष्ठम, घनवात वलय जो है वो तनुवात वलय पर प्रतिष्ठित है। तनुवात वलय आकाश प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठम, तनुवात वलय जो है वो आकाश प्रतिष्ठ है, अर्थात आकाश पर स्थित है। आकाशम आत्म प्रतिष्ठम, आकाश जो है वो अपने में प्रतिष्ठित है। तस्य आधार आधेयत्वात्, क्योंकि आकाश का आधार भी वही है और आकाश खुद ही उस अपना आधेय है। आधार देने वाला भी और लेने वाला भी खुद आकाशी है। त्रीण्यप्येतानि वलयानि, ये तीनों प्रकार की तीनों वलय प्रत्येकम सब विंशति योजन सहस्र बाहुल्यानि, 20,000 योजन चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं। सप्तक ग्रहण संख्यांतर निवृत्त्यर्थम, सात जो ग्रहण किया गया है शब्द वो अन्य संख्या की निवृत्ति के लिए। सप्त भूमियो नाष्टो न नव चेति, सात ही भूमियां हैं, न आठ है न नौ है। अधोदह वचन, अधोदह ये जो वचन है सूत्र में, तिर्यक प्रचय निवृत्त्यर्थम, तिरछा जो प्रचय है उसकी निवृत्ति के लिए, अर्थात ये भूमियां आड़ी तिरछी नहीं है किंतु नीचे नीचे की तरफ है। किंता भूमियो नारकाणाम सर्वत्रावासा आहोस्वित क्वचित क्वचित इति तन निर्धारणार्थमः, क्या ये भूमियां सर्वत्र सब तरफ नारकों के आवास रूप होती है? आहोस्वित अथवा क्वचित क्वचित, कहीं कहीं पर नारकों के आवास होते हैं। इति, इसलिए ये जो शंका उठी है इसके लिए, तन निर्धारणार्थम उसका निश्चय करने के लिए, आह आचार्य सूत्र कह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य, तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथा क्रमम। तासु यानी उन रत्न प्रभादिषु भूमिषु, रत्न प्रभा आदि भूमियों में, नरकाण्यनेन संख्यायन्ते यथा क्रमम, इस सूत्र के द्वारा नरकाणी जो नरक बिल हैं वे संख्यायन्ते, संख्या में निश्चित हो जाते हैं यथा क्रमम, क्रमशः। रत्न प्रभायां त्रिंशत नरक शत सहस्राणि, रत्न प्रभा यानी पहली पृथ्वी में 30,00,000 नरक हैं। त्रिंशत नरक शत सहस्राणि 30,00,000। शर्करा प्रभायां पंचविंशतिर नरक शत सहस्राणि, और दूसरी शर्करा प्रभा भूमि में 25,00,000 नरक हैं। बालुका प्रभायां कुल 84,00,000 होंगे, बालुका प्रभा में तीसरी भूमि में पंचदश नरक शत सहस्राणी, वालुका प्रभा है, बालुका नहीं है, वालुका 15,00,000 नरक है। पंक प्रभायां दश नरक शत सहस्राणी, पंक प्रभा चौथी जो भूमि है वहां 10,00,000 है। धूम प्रभायां, धूम प्रभा यानी पांचवी पृथ्वी में त्रीणी नरक शत सहस्राणी, 3,00,000 है। तमह प्रभायां छठी पृथ्वी में पंचोन मेक नर मेकम नरक शत सहस्रम, 5,00,000 नरक है, 5,00,000 नरक 95,000 नरक है। अभी तो लाखों में चल रही थी गिनती, अब हजार में आ गई। महातमह प्रभायाम पंच नरकाणी, और महातमह सातवीं पृथ्वी में 5 ही नरक है, कुल 84,00,000 हो रहे हैं, गिन लो 30, 25 और 10, 30, 25 और 10, 75। अच्छा हाँ, ये 15 भी बीच में है, ठीक है, 30, 25 फिर 15 फिर 10, साठ सत्तर अस्सी, अस्सी हो गए ना। इसके बाद धूम प्रभा में तीन नरक हैं तो तेरासी हो गए हैं, पांच पृथ्वियों तक। फिर अब बची जो नीचे की दो पृथ्वियां, उनमें एक में पंचानवे हजार और दूसरे नहीं, पंचानवे हजार नहीं, एक लाख में पांच कम, पंचानवे हजार नहीं होंगे, फिर 95 नहीं होंगे, 9999 मैंने एक लाख में पांच कम करना है, निन्यानवे हजार नौ सौ पंचानवे इतने होंगे और आखिरी में पांच होंगे, तो कुल एक लाख हो गए। वो नीचे की दो पृथ्वियों में एक लाख नरक हो गए। रत्न प्रभायाम नरक प्रस्तारास्त्रयोदश। अब पाथड़े जो हैं नरकों के, पहली पृथ्वी में तेरह हैं। ततो अद आ सप्तम्या द्वौ द्वौ नरक प्रस्तारौ हीनौ। इसके बाद अगले अगले नरकों में नीचे नीचे के दो दो प्रस्तार कम करते जाना। तेरह के बाद ग्यारह दूसरी पृथ्वी में, फिर तीसरी में नौ, चौथी में सात, पांचवी में पांच, छठी में तीन और सातवीं में एक। ऐसे प्रस्तार कुल मिलाकर कितने हो गए? 49 हो गए। वही जो पहले बताया था ना कि देवों में 63 पटल हैं, नरकों में 49, 49। अब ये है कि मतलब 13 पटल में 30 लाख बिल बनेंगे नरकों के, और उधर 13 के बाद 11 पटल में 25 लाख रहेंगे, 9 पटल में 15 लाख, फिर 7 पटल में 10 लाख, फिर 5 पटल में 3 लाख, फिर 3 पटल में 5 कम 1 लाख और 1 पटल में 5। ऐसे नरकों की व्यवस्था है। इतरो विशेष लोकानुयोग तो वेदितव्य है, और जो इससे अलग और भी जो भेद हैं इसमें वो लोकानुयोग से जान लेना चाहिए। लोकानुयोग का मतलब कर्णानुयोग, लोकानुयोग कहते हैं कर्णानुयोग को, जिसमें लोकालोक का वर्णन होता है। अतः तासु भूमिषु नारकाणां का प्रतिविशेष इत्यतः। अब उन भूमियों में जो नारक जीव होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है इत्यतः, इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं, नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारक जीव निरंतर अशुभ लेश्या वाले, अशुभतर यानी मनुष्य तिरंचों में जो लेश्या हो उससे भी बदतर लेश्याएं होती है उनकी, परिणाम देह वेदना और विक्रिया वाले होते। लेश्यादेव व्याख्यात अर्थ, लेश्यादिक का अर्थ व्याख्यात है, मैंने पहले बतलाया जा चुका है। अशुभतर यदि प्रकर्ष निर्देश, अशुभतर का मतलब उसकी अधिकता बतलाना है। तिर्यक गति विषय अशुभ लेश्याद्यपेक्षया, तिरंज गति आदि से संबंध रखने वाली जो अशुभ लेश्याएं हैं उसकी अपेक्षा से अधोध स्वगत्यपेक्षया च वेदितव्य। और नीचे नीचे अपनी नरक गति से भी उसकी अपेक्षा कर लेना कि नीचे वाले नरकों में नरक की लेश्याएं हैं, ऊपर की उससे भी बदतर लेश्याएं नीचे नीचे हैं, ऐसा जानना। नित्य शब्द आभीक्ष्य वचन है, नित्य शब्द जो दिया है वो आभीक्ष्य यानी निरंतर इस बात को सूचित करने वाला है कि हमेशा इनकी ऐसी बातें रहती हैं इतनी सारी। नित्यम अशुभतर लेश्यादेव येषां ते, नित्य ही अशुभतर लेश्या अधिक जिनकी होती है वे नित्य अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया नारका, ऐसे वे नारक होते हैं। अब इसका खुलासा कर रहे हैं, प्रथमा द्वितीय यो हो कापोती लेश्या, पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोती लेश्या है। तृतीयायाम उपरिष्टात कापोती अधोनीला, तीसरी पृथ्वी में ऊपर की तरफ कापोती लेश्या है ऊपर के कुछ प्रस्तारों में, और अधोनीला निचले प्रस्तारों में नील लेश्या है। चतुर्थ्यां नीला, चौथी में नील लेश्या है। पंचम्याम उपरि कृष्ण नीला, पांचवी के ऊपर वाले भागों में नील है, अधः कृष्णा नीचे की तरफ कृष्ण है, षष्ठ्यां कृष्णा छठी में कृष्णलेश्य है, सप्तम्यां परम कृष्णा सप्तमी सातवीं पृथ्वी में परम कृष्णलेश्य है, स्वायु प्रमाण आवधृता द्रव्यलेश्य उक्ता है, अपनी आयु प्रमाण जो निश्चित लेश्याएं हैं वो द्रव्यलेश्याएं हैं यहाँ पर उक्ता कह दी। द्रव्यलेश्याएं हैं ना उनके शरीर का रंग ये सब बताया पूरा, ये सारे जो रंग है ना उनके शरीर के रंग हैं। भावलेश्यास्तु किंतु भावलेश्याएं अंतर्मुहूर्त परिवर्तिन्य, अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती हैं, वो भावलेश्याएं भी होती हैं इनकी। ये तो इनकी द्रव्यलेश्या जीवन भर एक जैसी रहती है, शरीर का रंग बदलेगा नहीं, लेकिन भावलेश्याएं अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती हैं। तो इसको याद रखने का तरीका यह है कि तीन तीन नरकों में एक एक लेश्या है। कापोती लेश्या को तीन नरकों में विभाजित कर लो, तो पहले में जघन्य कापोती, दूसरे में मध्यम कापोती, तीसरे में सबसे ज्यादा कापोती होती है उत्कृष्ट कापोती लेश्या है। फिर तीसरे के कुछ भागों में जहां पर नील लेश्या है वो नील लेश्या जघन्य नील है, फिर चौथे में मध्यम नील है, और पांचवें में जहां तक नील लेश्या है वहां तक उत्कृष्ट नील लेश्या है, फिर पांचवें में जहां पर कृष्ण लेश्या शुरू होती है वो जघन्य कृष्ण है, छठी में पूरी मध्यम कृष्ण है, और सप्तमी में परम कृष्ण लेश्या है। ऐसा परिणाम, अब परिणाम का मतलब परिणमन, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाह, परिणमन का मतलब जो वहाँ नरक संबंधी स्पर्श है रस है गंध है वर्ण और शब्द है, पांच इंद्रियों के विषयभूत, ये सारे क्षेत्र विशेष निमित्त वशात, क्षेत्र विशेष के निमित्त के प्रभाव से अति दुख हेतव, अति दुख के हेतु होते हैं, अशुभ तराह अशुभ तर होते हैं, देहाश्च तेषाम और उनके जो शरीर होते हैं वे अशुभ नाम कर्मोदयात, अशुभ नाम कर्म के उदय के कारण अत्यंत अशुभ तरह अत्यंत अशुभ तर होते हैं, विकृत आकृतयो विकृत आकृति वाले होते हैं, हुंड संस्थाना हुंड संस्थान वाले होते हैं, और दुर्दर्शना जिनको देखना भी अच्छा ना लगे किसी को, ऐसे दुर्दर्शन होते हैं, तेषाम उत्सेद उनकी ऊंचाइयां, प्रथमायाम सप्तधनुषी त्रयोहस्ता षड अंगुल्य अंगुलय, पहली पृथ्वी में सात धनुष तीन हाथ और छह अंगुल ऊंचाई होती है, अधोधो द्विगुण द्विगुणी द्विगुण द्विगुण उत्सेद है, नीचे नीचे दुगुना दुगुना उत्सेद होता चला जाता है, आभ्यंतरा सद्वेद्योदय सती, और अंतिम सातवीं पृथ्वी में 500 धनुष की ऊंचाई होती है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आया था, आभ्यंतर असद वेद्योदय स्थिति, अंतरंग में असाता वेदनी का उदय होने पर अनादिपारिणामिक, अनादिपारिणामिक जो नरकों में मतलब वैसा स्वभाव है ठंडक गर्मी आदि का, शीतोष्ण बाह्य निमित्त जनिता, शीत और उष्ण संबंधी जो बाह्य निमित्त से उत्पन्न होने वाली अति तीव्र वेदना भवंती नारकणा, बहुत तीव्र वेदना नारक जीवों को होती है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थीषु पहली दूसरी तीसरी और चौथी पृथ्वियों में उष्ण वेदना नीव नरकाणी उष्ण वेदना वाले ही नरक हैं, पंचम्याम उपरी उष्ण वेदने द्वे नरक शत सहस्त्रे, और पांचवी में ऊपर 200,000 जो नरक हैं, 300,000 है ना पांचवी में, तो ऊपर के 200,000 उष्ण वेदना वाले हैं, अध शीत वेदनम एकम शत सहस्त्रम, और नीचे के जो 100,000 बिल हैं वो शीत वेदना वाले हैं, षष्ठी सप्तम म्यो छठी और सातवीं पृथ्वी में शीत वेदना नीव शीत वेदना वाले ही नरक हैं, शुभम विकरिष्यामेति अशुभ तरमेव विकुर्वन्ति, हम अच्छी विक्रिया करें ऐसा करना भी चाहो तो वो नरक के जीव अशुभ तरमेव विकुर अशुभ तर ही विक्रिया कर बैठते हैं, सुख हेतु उत्पादयामेति सोचते हैं कि थोड़ा सा सुख का कोई हेतु हम उत्पन्न कर दें क्योंकि विक्रिया बल है हमारे पास तो कोई अच्छी इष्ट सामग्री बना ले ऐसा सोचते हैं तो दुख हेतु नहीं वो उत्पादें थी वो कुछ उल्टे दुख के हेतु उत्पन्न कर बैठते हैं, ते एते भावा धो शुभ तरा वेदितव्या ये ऐसे जो परिणमन होते हैं ये सारे भाव नीचे नीचे और अशुभ होते चले जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। किम एतेषां नारकाणां शीतोष्ण जनितमेव दुःखान् दुःखम् उदान्यथापि भवति इति अतः, क्या इन नारक जीवों को शीत और उष्ण से उत्पन्न होने वाला दुख ही होता है अथवा अन्यथा भी अन्य प्रकार से भी होता है? इति अतः, इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं परस्परो दीरित दुःखाः, ठंड और गर्मी के दुख तो अलग हैं लेकिन ये आपस में एक दूसरे को भी दुख प्रदान करते हैं। पांच प्रकार के दुख आए थे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में नरकों के, कथम आपको याद है पांच प्रकार के कौन से दुख थे? ये चार तो यही मालूम पड़ जाएंगे। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, क्षेत्र जनित दुख है, आपस में भिड़ाकर होने वाले दुख हैं, और असुरों के द्वारा। कथम परस्पर उदीर दुखत्वम, कैसे एक दूसरे को दुख दिया जाता है? तो बोलते हैं कि नारका हम नारक जो होते हैं भव प्रत्ययन अवधिना, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के कारण मिथ्या दर्शनोदयाद विभंग व्यपदेश भाजाच, और मिथ्या दर्शन का उदय हो तो फिर विभंग इस नाम को प्राप्त होने वाले अवधि ज्ञान के द्वारा दूरादेव दूर से ही दुख हेतु अवगम्य, दुख के हेतुओं को समझ जाते हैं कि अब ये दुख आने वाला है, अवधि ज्ञान से मालूम पड़ जाता है उनको, और उत्पन्न दुखा, और उनको पहले ही दुख हो जाता है जब कोई चीज़ आने वाली होती है दुख को उत्पन्न करने के लिए, उनको अवधि ज्ञान से पहले ही मालूम पड़ जाता है और पहले से ही दुखी हो जाते हैं। जैसे किसी को ज्योतिष बोल दे कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है तो एक्सीडेंट हो या ना हो वो पहले ही दुखी होता है, वैसे ही नारकों की स्थिति होती है। और प्रत्यासत्व और निकट आ जाने पर परस्पर आलोकनाच, एक दूसरे को देखने के कारण प्रज्वलित कोपाग्नय, प्रज्वलित हो गई है क्रोध रूपी अग्नि जिनकी, ऐसे होकर पूर्व भवानुस्मरणात पूर्व जन्म का अनुस्मरण होने के कारण चाति तीव्र अनुबद्ध वैराश्य, अत्यंत तीव्र बंधे हुए वैर वाले वे नारक श्व श्रृगाल आदि वत कुत्ते और सियारों के समान स्वाभिघाते प्रवर्तमान, अपने अपने अभिघात करने के लिए प्रवर्तमान हो जाते हैं, माने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कुत्ते और शियार एक दूसरे से जब लड़ाई करते हैं तो फिर नोच डालते हैं एक दूसरे को, वैसे ये भी नारक भी वैसे ही करते हैं। स्वविक्रिया कृतासी वासी परशु भिंडीमाल शक्ति तोमर कुंता योधनादि भिरायुधैः स्वकर चरण दशनैश्च छेदन भेदन तक्षण दंशनादि भी परस्पर स्याति तीव्र दुःखम उत्पादयन्ति। बोले कि वो एक दूसरे को मारने के लिए प्रवृत्त होकर अपनी विक्रिया से किए गए बनाए गए असी यानी तलवार, वासी यानी वसूला जिससे घास काटते हैं ना, वसूला किसको बोलते हैं, हाँ वही, और परशु यानी कुल्हाड़ी, भिंडीमाल भी एक हथियार होता है युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, शक्ति जो लक्ष्मण को लगी थी, तोमर भी एक हथियार है, बर्छी तोमर आदि अस्त्र विशेष, ऐसे कई प्रकार के योधन आदि भी हैं। योधन का मतलब ये युद्ध के जो हथियार होते हैं, आयोधन आदि भी, ये भी सब हथियारों के नाम है समझ लो। ऐसे आयुधों के द्वारा अपने कर यानी हाथ, चरण यानी पैर, दशन यानी दांत, इनसे भी छेदन भेदन तक्षण दंशन आदि भी, छेदन यानी काटना, भेदन यानी चुभाना, तक्षण यानी छीलना और दंशन यानी काटना आदि के द्वारा परस्पर से एक दूसरे को अति तीव्र दुख उत्पन्न कराते हैं। किमेतावानेव दुखोत्पत्ति कारण प्रकार उदान्योपि कश्चिद् अस्ति इति इति अतः, क्या यही दुख की इतना ही दुख की उत्पत्ति के कारण और प्रकार हैं या फिर और भी कोई बचता है? तो आचार्य कहते हैं कि है। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः, संक्लिष्ट जो असुर है, संक्लिष्ट यानी तीव्र कषायों से युक्त जो असुर हैं उनके द्वारा उदीरित हैं दुख जिनके, वैसे नारकी प्राक चतुर्थ चौथी पृथ्वी के पहले तक यानी तीसरी पृथ्वी तक पाए जाते हैं। देवगति नाम कर्म विकल्पस्य असुरत्व संवर्तनस्य कर्मणः उदयात् अस्यति परानिति असुराः। देवगति नाम कर्म के विकल्प यानी देवगति नाम कर्म के बहुत सारे भेद हैं, उनमें से एक भेद ऐसा है जो असुरत्व संवर्तनस्य असुरत्व में संवर्तन कराने वाला कर्म है, उसके उदय से यानी देवगति नाम कर्म का एक भेद है असुर, तो उसमें पैदा कराने वाला जो नाम कर्म है उसके उदय से अस्यन्ति परानिति असुराः। इस शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं कि जो दूसरों को उठा उठा के फेंकते हैं वो असुर कहलाते हैं। पूर्व जन्मनी पिछले जन्म में भावितेन अति तीव्रेण संक्लेश परिणामेन भाए गए अत्यंत तीव्र संक्लेश परिणाम के द्वारा यत उपार्जितम पाप कर्म जो पाप कर्म उपार्जित किया था तस्य उदयात उसके उदय के कारण सततं क्लिष्टा निरंतर क्लिष्ट रहते हैं संक्लिष्टा वो संक्लिष्ट कहलाते हैं। संक्लिष्टा असुरा संक्लिष्टा असुरा कर्मधारय समास बना दिया कि कैसे हैं वो असुर तो संक्लिष्ट है संक्लेश से युक्त है। संक्लिष्टता इति विशेषणात् न सर्वे असुरा नारकणाम दुखम उत्पादयन्ति। संक्लिष्ट ये जो विशेषण दिया है इसका मतलब ये हो गया कि सारे असुर जाकर नरकों में भिड़ाने का काम नहीं करते, किंतु जो जो असुर संक्लिष्ट हैं वे ही तीव्र कषाय से युक्त हो गए हैं वही नीचे नरकों में जाकर के लड़ाते भिड़ाते हैं। किन तरह ही फिर कौन लड़ाते हैं तो अम्बावरीश आदय एव केचन इति कुछ असुर देव जो अम्बावरीश आदि जाति के हैं वे ही लड़ाते भिड़ाते हैं सब नहीं। असुर कुमारों का इंद्र जो होता है शमरेंद्र कहलाता है और वैरोचन आगे बतलाएंगे। तो अवधि प्रदर्शनार्थम प्राक चतुर्थ्या अवधि यानी सीमा बताने के लिए कह दिया कि चौथी से पहले इति विशेषण ये विशेषण हो गया। ऊपरी त्रिशिशु भूम पृथ्वीशु ऊपर की तीन पृथ्वियों में संक्लिष्टा सुरा बाधा हेतु वो नातः परम इति प्रदर्शनार्थम वो संक्लिष्ट असुर जो होते हैं बाधा के हेतु बनते हैं उससे परम यानी आगे चौथी पृथ्वी में नहीं बनते, ये प्रदर्शित करने के लिए प्राक चतुर्थ्या लिखा है। च शब्द च शब्द भी दिया है इसमें च शब्द का मतलब क्या है पूर्वोक्त दुख हेतु समुच्चय अर्थ पिछले सूत्रों में जो दुख के कारण बतलाया ना नरकों में उसको भी यहाँ इकट्ठा कर देना यानी तीन पृथ्वियों तक ये सारे कारण बनेंगे नरकों में दुख के। सुतप्तायो रस पाय पायन निष्टप्ताय स्तंभा लिंगन कूट शाल्मल्यारोहणावतरण आयोधनादि आयोधनाभिघात वासी क्षुर तक्षण क्षार तप्त तैलावा सेचनाय कुंभी पाकांब रीश भर्जन वैतरणी मज्जन यंत्र निष्पीडन आदिभिर नारकाणाम दुखम उत्पादयंती। ये असुर कैसे उनको दुख उत्पन्न कराते हैं नरक में जाकर असुर करते क्या हैं? एक दूसरों को भिड़ाते हैं तो ठीक है छेड़ाला में लिखा है असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, लेकिन क्या असुर सिर्फ इतना ही काम करते हैं? यहां देखो क्या क्या बता रहे हैं। सुतप्तायो रस पायन खूब तपा हुआ अयो रस मतलब लोहे पिघला हुआ लोहा उसका पायन यानी पान कराते हैं जबरदस्ती। और क्या कराते हैं निष्टप्ताय स्तंभालिंगन खूब तपे हुए आयस्तंभ यानी लोहे के खंभे से आलिंगन कराते हैं। फिर कूट शाल्मल्यारोहण कूट और शाल्मली जो वृक्ष हैं उस पर आरोहण कराते हैं और अवतरण कराते उतरवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि शरीर का छेदन भेदन हो जाता है। और आयोधन आभिघात आयोधन यानी गदा वगैरह जो हथियार होते हैं उससे मारते पीटते हैं उनको। और वासी क्षुर तक्षण वासी और छुरे से उनको छीलते हैं। और क्षार तप्त तैल खारा और तपा हुआ जो तेल है उससे अवसेचन वो छीलने के बाद उसके ऊपर उसको छींटते हैं छींटे मारते हैं उनके ऊपर। और अयह कुंभी पाक लोहे की जो कुंभी पाक है उसमें अम्बरीश भर्जन अम्बरीश भर्जन का अर्थ क्या होता है तेल की कढ़ाई में पकाना और भाड़ में भूंजना अम्बरीश यानी भाड़ होता है, उसमें भूंजना, जैसे चने भूंजते ना भाड़ में वैसे। और वैतरणी मज्जन, वैतरणी नाम की जो नदी है वहां नरकों की, उसमें मज्जन यानी डुबाते हैं। यंत्र निष्पीड़न यानी जैसे गन्ने का रस निकालने के लिए जो यंत्र होता है, उसी प्रकार वो वहां पर यंत्रों में असुर कुमार देव उनको निष्पीड़न यानी पेलते हैं। आदि फिर, और आदि और भी ऐसी, तो सिर्फ दृष्टांत दिए हैं ऐसे।